नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तरह के पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी और भारत पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर ज़ाग्रेब पहुंचेंगे। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। नौसेना ने देश के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज INS अर्नला का विशाखापट्टनम में तैनात किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के बाद युद्ध की घोषणा की, संघर्ष और तेज हुआ। और मौसम विभाग ने राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है और आगे भी नहीं किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस संबंध में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया है कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि भारत अब आतंकवादी कृत्यों को छद्म कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। श्री मिश्री ने बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारत और कनाडा परस्पर उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया है कि दोनों देशों के बीच हाल में हुए तनाव को देखते हुए दोनों नेताओं ने संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेताओं ने संबंधों में नई गति लाने और फिर से विश्वास कायम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष मंत्री स्तर और अन्य स्तर पर दोबारा बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की। साइप्रस और कनाडा की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब पहुंचेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा होगी। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई समझौते होंगे। इस बीच क्रोएशिया में भारतीय राजदूत अरुण गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के क्रोएशिया आगमन पर क्रोएशिया में मौजूदा भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। भारतीय नौसेना ने आज विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में अपने पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नला को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करके और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञताओं को एकीकृत करते हुए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी ला सकता है और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में निजी उद्यमों को एकीकरण के साथ खुद को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा, रक्षा विमानिकी गुणवत्ता आश्वासन सेवा और केंद्र श्रम सेवा के परिवीक्षार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा है कि सार्वजनिक सेवा अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके निर्णय और कार्य जीवन को बदलने की क्षमता रखते हों। श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि अधिकारों को सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्री सुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले EXIM-4 मिशन को 22 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक्सियम स्पेस ने इसकी घोषणा की है। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से ₹3,000 की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव हो सकेगी। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का छठा दिन है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और हवाई हमले कर रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और व्यापक होने की आशंका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने इसराइल को सख्त चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खामनेई ने कहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ईरान का इसराइल को कड़ा जवाब देना चाहिए और उसके प्रति कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण करने की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का इसराइल की ओर से की जा रही बमबारी में कोई हाथ नहीं है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बिजली और गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मेघालय, पश्चिम बंगाल में गंगेत्री क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में भी अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जड़ामणि ने बताया है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव के कारण आज और कल सभी जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम वर्धमान जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता और आसपास के जिलों में भी बारिश हो रही है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों पापुमपारे, पाके केसांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लगभग 190 डीएनए नमूनों की पहचान की जा चुकी है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ राकेश जोशी ने बताया है कि 157 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस बीच दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉ जोशी ने बताया कि दुर्घटना के दिन सिविल अस्पताल में 71 मरीज उपचाराधीन थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। इनके अलावा दुर्घटना के दिन 4 मेडिकल छात्रों समेत 8 स्थानीय लोगों की भी मौत हुई। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने विश्वभर में योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री जाधव ने पिछले 11 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। इनमें 2014 में आयुष मंत्रालय के निर्माण से लेकर योग के संस्थागतकरण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कार्यस्थल पर वाई ब्रेक जैसे अग्रणी तकनीकों के बारे में भी विस्तार से बताया, जो पेशेवरों के लिए कम से कम संबंधित तनाव से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है और जो 5 मिनट में योग के मॉड्यूल से किया जा सकता है। यह विशेष साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और पूरे आकाशवाणी नेटवर्क पर विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल के हिस्से के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ये साक्षात्कार हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी प्रसारित होगा। और अब खबरें खेल जगत से। भारत के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल सिंगापुर में एशियाई कप लीग 2 में अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में शीर्ष तीरंदाज कुशल दलाल ने बांग्लादेश की हिमू बछार को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। व्यक्तिगत महिला कंपाउंड वर्ग में भारत का स्वर्ण और रजत पदक तय है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम 4 देशों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज बेंगलुरु से जर्मनी के लिए रवाना हुई। कप्तान अरिजीत सिंह हुंडल की अगुवाई में टीम ने 21 जून को मेजबान जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम 22 जून को ऑस्ट्रेलिया और 24 जून को स्पेन के खिलाफ अपने मुकाबले खेलेगी। इस बीच बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में होने वाले पहले टेस्ट के लिए हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया है। राणा इंडिया ए टीम का हिस्सा है। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के साथ हाल में हुई सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर ज़ाग्रेब पहुंचेंगे। नौसेना ने देश के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज INS अर्नला को विशाखापट्टनम में तैनात किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।